हे गाइस, हाउ आर यू? वेलकम टू अवर चैनल टेक कैफे। और टेक कैफे के इस पॉडकास्ट के एपिसोड में आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ। भाई, क्या हाल है?
हाँ भाई, कैसे हो? और आज क्या कुछ आ रहा है? कुछ नया अपडेट क्या आ रहा है हमारा?
मतलब अच्छी बातें, अच्छे टेक न्यूज़ और अच्छी खबर हम आपके लिए लेकर आए हैं भाई। तो शुरुआत करते हैं भाई हमारी पहली खबर की ओर से। तो पहली खबर की बात करें भाई, मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना चाहूँगा स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर चैलेंज के ऊपर भाई। तो बता दूँ कि गवर्नमेंट ने अभी आत्मनिर्भर भारत अभियान जो चला रखा है भाई, पता है तुझे कि जिस तरह से अभी चाइना के खिलाफ जिस तरह का माहौल चल रहा है, उसके तहत भारत ने जो आत्मनिर्भर भारत अभियान चला रखा है गवर्नमेंट ने, उसके तहत उन्होंने एक नई चैलेंज लेके आए हैं भाई, कि उसे कहते हैं स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर चैलेंज। उसमें उन्होंने क्या किया कि जो हमारे जो दो प्रोसेसर है, जो कि स्वदेशी प्रोसेसर हम कह सकते हैं, जिसका नाम है शक्ति और दूसरा है वेगा, तो उस दो माइक्रो प्रोसेसर का यूज़ करके हमें क्या बनाना है, कुछ कॉम्प्लेक्स डिज़ाइन बनानी है। जैसे कि बात करें हम जिसे वो ऑटोमेटिक फैन आता है या फिर वो लॉक आता है, या फिर बात करें हम कि जिस तरह से स्पेस या फिर डिफेंस या फिर न्यूक्लियर एनर्जी जो होती है, उसमें जो मतलब जिस तरह के डिवाइस यूज़ होते हैं, वो हमारे जो स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर है उसके यूज़ करके हमें बनाना है। तो इसको किस तरह से देखते हो भाई तुम?
सही बात है भाई। और एक जो मेन जो है कि हमारा जो अपना जो प्रोसेसर जो है उसको यूज़ करना है यहाँ पे, तो ये काफ़ी अच्छा हो जाएगा क्योंकि उसके बेस पे सारी डिवाइस बनेगी, तो एक अच्छा रहेगा कि डिपेंडेंसी नहीं रहेगी दूसरे प्रोसेसर पे।
तो मतलब जो गवर्नमेंट है उन्होंने काफ़ी लंबा सोच के ये स्टेप लिया होगा भाई, कि जैसे जैसे अभी समय बढ़ेगा हमें आत्मनिर्भर होना पड़ेगा। जिस तरह से अभी हमें जो दूसरे जो कंट्री है उस पे ऊपर हमें डिपेंड रहना पड़ रहा है, जिस तरह से हम काफ़ी ज़्यादा जो हमारे प्रोसेसर्स आते हैं वो सभी जो होते हैं हम बाहर की कंट्रियों से एक्सपोर्ट करते हैं, तो इस तरह का एक अच्छा इनिशिएटिव मैं कहूँगा कि जिस तरह से अभी वो ट्राई कर रहे हैं, कि मतलब एक दिशा में ट्राई कर रहे थे, अभी से जो शुरुआत की जाए तो आगे आके मतलब अच्छा हो सकता है इंडिया के लिए। क्या बोलोगे भाई?
सही बात है भाई। और सारी बहुत सारी डिवाइस जो है हमारा जो डिफेंस के अंदर जो यूज़ होती है, जिसे हम बेसिकली IoT बोलते हैं, तो ऐसी सारी डिवाइस जो है उसको बनाना इसी हो जाएगा। और क्योंकि सारी डिवाइस जो स्मार्ट डिवाइस जो भी जो होती है उसमें सारी डिवाइस में एक प्रोसेसर जो आता ही है बेसिकली, तो प्रोसेसर जो है वो अपना होगा और उसके बेस पे हम क्या कुछ बना सकते हैं वो हमें यहाँ पे देखना है।
तो मतलब उन्होंने पूरे देश में से स्टूडेंट को या फिर कोई हम बोल सकते हैं साइंटिस्ट बोल सकते हैं, उनको इनवाइट किया है कि भाई आप आए और जो ये हमारे स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर है उसको यूज़ करके कुछ अच्छी कॉम्प्लेक्स डिज़ाइन बनाए, जो कि हमारे जो रोज़ बरोज़ के काम आते हैं, जैसे हम कह सकते हैं होम अप्लायसेस या फिर जो यूज़ हो सके स्पेस के अंदर, जो यूज हो सके डिफेंस के अंदर, और जो यूज हो सके न्यूक्लियर सिस्टम की सिस्टम में, उस तरह के हमें डिवाइस बनाने हैं। तो भाई बात करें इसकी, तो ये जो है ना प्रोग्राम वो डेवलप हुआ है जो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के जो डिपार्टमेंट है उसके नीचे ये डेवलप हुआ है, वो हुआ है CDEC, IIT मद्रास और IIT बॉम्बे, उसमें ये प्रोग्राम चलाया जाने वाला है। तो इसके तहत क्या करना है, जो इन्वाइट करेंगे उनको एक डिज़ाइन बनानी है, कुछ एक तरह का अप्लायसेस बनाना है, कुछ इस तरह का एक डिवाइस बनाना है जो कि ये हमारे जो स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर है उसके ऊपर चल सकेंगे। तो शुरुआत करते भाई उसके और धीरे धीरे बढ़ते हो कि इसमें जो दो होते हैं, दो प्रोसेसर हमारे स्वदेशी है उसके बारे में बात करते हैं। तो पहला जो आता है वो है शक्ति। तो तूने सुना ही होगा कि शक्ति जो है वो IIT मद्रास की ओर से डेवलप किया गया है, और वो जो वेगा है वो CDEC की ओर से डिज़ाइन किया गया है। तो दोनों का यूज़ करके हमें दोनों जो प्रोसेसर है 32-bit और 64-bit के हैं, ये मैं बता दूँ तुझे, और इसका यूज़ करके हमें कुछ कॉम्प्लेक्स डिज़ाइन बनानी है। तो क्या कहोगे इसके बारे में, तुम्हारा क्या पॉइंट ऑफ व्यू है भाई?
सही बात है भाई। और डिज़ाइन जो बनानी है उसमें भी बहुत सारे स्कोप है, जैसे कि स्मार्ट डिवाइस जो हमारी जो भी होती है वो हम कर सकते हैं, जो इंटरनली जो हमारा डिफेंस है, स्पेस है, उसके बेस भी अगर आपके पास नॉलेज है तो बना सकते हैं उसका भी, नहीं तो बेसिक डिवाइस जो हमारी जो है जैसे कि स्मार्ट फैन हो गए, स्मार्ट लॉक हो गए, ये भी हम बना सकते हैं इससे। तो अभी जो है यहाँ पे हम देखने वाले स्टार्ट में कि भाई एलिजिबिलिटी का जो हमारा क्राइटेरिया जो है यहाँ पे वो क्या है, कि कौन कौन से लोग जो है पार्टिसिपेट कर सकते हैं, तो सबसे पहले वो देखते हैं। आप बताइए अभी क्या कर सकते हैं।
तो भाई इसमें क्या होता है कि कुछ स्टूडेंट भी, जैसे हमारे तरह कुछ स्टूडेंट भी यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। मैंने आगे भी बताया कि कुछ साइंटिस्ट जो कि ऐसा कुछ जानते हैं प्रोसेसर के बारे में, या फिर वो इसी मतलब जो इसी जो फील्ड होते हैं उसी में जो लोग काम कर रहे हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं। तो रजिस्ट्रेशन उसका भाई है ना, वो 18 अगस्त से 15 सितंबर के बीच हमें रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा ऑनलाइन, जो हमारी ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की माई गवर्नमेंट जो वेबसाइट है, innovate.mygovernment.in की जो वेबसाइट, ये वेबसाइट पे हमें रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। उसके बाद क्वार्टर फाइनल होगा 16 सितंबर और 10 नवंबर के बीच, उसमें से फिर आगे जाना है, फिर आएंगे सेमीफाइनल। तो सेमीफाइनल में भाई 100 टीमों को पसंद किया जाएगा, और ये 100 टीम है उसको कुल मिलाकर 100 करोड़ का जो इनाम रखा है उन्होंने, मतलब कि एक टीम को एक लाख शायद आएंगे, इस तरह से उन्होंने इनाम भी डिक्लेयर किए हैं सेमीफाइनल में। वो सेमीफाइनल है भाई 1 जनवरी टू 15 मार्च 2021 के बीच में ये सेमीफाइनल होगा। उसके बाद फाइनल आएंगे। फाइनल में क्या होगा भाई कि जो 100 टीम थी उसमें से 25 टीम चूज़ की जाएगी, और वो जो 25 टीम थी उसके बीच 1 करोड़ इनाम उन्हें दिया जाएगा, मतलब कि मतलब 4 लाख एक टीम को मिलेगा। उसके बाद ये जो फाइनल से उसके बाद आएगा इक्यूबेशन। तो इक्यूबेशन पीरियड 1 ईयर का ये दे रहे हैं, 1 साल का इक्यूबेशन पीरियड भाई दे रहे हैं, जो कि चलेगा जुलाई 21 से जून ट्वेंटी सॉरी जुलाई 2021 से जून 2022 तक चलेगा। उसमें ये लोग क्या करेंगे, 10 टीमों को वो 2 करोड़ 30 लाख देंगे। तो 12 मंथ का ये जो इक्यूबेशन सपोर्ट है काफ़ी अच्छी, एक तरह से मैं कहूँगा कि चैलेंज कही जा सकती है भाई, कि इस तरह से क्या होगा कि हमारे जो यूथ है या फिर हमारे जो इंडिया के लोग हैं उनमें भी स्किल डेवलपमेंट ज़्यादा होगी, वो कुछ नया करने की ट्राई करेंगे, या फिर ये जो प्रोसेसर है दोनों प्रोसेसर का यूज़ करके कुछ नया करने की ट्राई करेंगे, तो ज़रूर हमारे देश को फ़ायदा हो सकता है भाई। क्या कहोगे इसके बारे में?
सही बात है भाई। और जैसे अगर हम देखें यहाँ पे तो एक काफ़ी अच्छी कंटेस्ट हमारे लिए है, और एक खास हम डिस्कस कर दें एलिजिबिलिटी जो क्राइटेरिया जो है इसका वो क्या है। तो उस पर हम बात करें तो जैसे कि यहाँ पे जो ये जो है वो कंटेस्ट जो है पूरा ओपन है सबके लिए। जो स्टूडेंट जो है हमारे जो अंडर ग्रेजुएट है, पोस्ट ग्रेजुएट है, डॉक्टरेट डिग्री में जो है वो भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं इसमें। और जहाँ पे आपको क्या करना है कि 5 स्टूडेंट से ज़्यादा नहीं होने चाहिए एक टीम के अंदर, ऐसी
सही
एक
बात
टीम बना सकते हैं और उसमें 2 फैकल्टी मेंबर ऐड कर सकते हैं। तो 5 स्टूडेंट्स ज़्यादा से ज़्यादा और 2 फैकल्टी मेंबर ऐसे होके एक टीम बन सकती है, और ये टीम जो है वो करेगी क्या कुछ प्रोजेक्ट करना है उसके बारे में, ऐसे मिल के प्रोजेक्ट बना सकते हैं। और भी जो है कि पहले जो एक मेन जो पॉइंट जो यहाँ पे वो है कि इंडियन नेशनल होने चाहिए, और दूसरा जो है कि स्टार्टअप जितने भी है हमारे स्टार्टअप भी यहाँ पे कर सकते हैं कि इसमें हिस्सा ले सकते हैं, जितने भी स्टार्टअप है कि कोई अच्छी चीज़ पे ऑलरेडी काम कर रहे हो लोग। तो अगर वो भी दो मेन जो हमारा वो भी है कि 2 प्रोसेसर जो हमारे जो इंडियन प्रोसेसर है उससे ही हमको करना है। तो अगर कोई स्टार्टअप है जो ऑलरेडी वर्क कर रहा है तो उसको भी फायदा रहेगा कि कोई अच्छी प्रोडक्ट वो बना रहा है तो प्रोसेसर का डायरेक्टली यूज़ करेगा और इसमें आएगा, तो उसको फायदा ही मिल सकता है कि फंडिंग भी मिल सकती है काफ़ी सारी अच्छी, तो ये अच्छा है।
तो मतलब भाई एक तरह से मैं कहूँ तो बूस्ट मिलेगा हर एक टीम को जो कि अभी ट्राई करने की कोशिश कर रहे हैं, बूस्ट काफ़ी बूस्ट मिल सकती है भाई, ऐसा ही कहा जा सकता है।
सही बात है भाई। और यहाँ पे हम अवार्ड्स की बात करते हैं तो प्राइज मनी जो है हमारी, जो प्राइज मनी जो विनर जो है जिसको गोल्ड सर्टिफिकेट दिया जाएगा उसकी टोटल जो है वो 2.3 करोड़ की रखी हुई है सीड फंड में। और यहाँ पे जो है 10 टीम को दिया जाएगा, अलग अलग 10 टीमों को यहाँ पे लिया जाएगा। और उसके साथ अगर हम बात करें फाइनली सेकंड जो सिल्वर जो आता है उसमें 25 टीम को दिया जाएगा, और दूसरे जो है वो 100 टीम को दिया जाएगा सेमीफाइनलिस्ट में। तो
और
ऐसे करके
भाई
इन्वेस्टमेंट भी
हाँ
मिलेगा अच्छा खासा।
मैं आगे बात करूँ भाई, तो जिस तरह मैंने कहा कि शक्ति और वेगा प्रोसेसर का यूज़ करके ये जो इक्विपमेंट है वो बनाने हैं, तो बात करें शक्ति की तो भाई उसमें 32 बिट में जो आता है वो है पिनाका और प्रासु, जो कि नाम है E32A35 जिसको हम पिनाका बोलते हैं, और E32A100 जिसको हम बोलते हैं प्रासु। तो ये दोनों है उसका सॉरी ये जो दोनों है वो 32 बिट के हैं, और दूसरा आता है वज्र जिसे हम बोलते हैं C64A100 जो कि 64 बिट का प्रोसेसर है और वो लिनक्स कंपेटेबल है, लिनक्स केपेबल है, तो इसका यूज करके भी हम बना सकते हैं। और दूसरा जो सीडेक द्वारा जो डेवलप किया गया है वो प्रोसेसर भाई है जो कि वेगा, तो उसमें भी ये दो आते हैं, जो 32 बिट का जो प्रोसेसर माइक्रो कंट्रोलर जो आता है, हम कहेंगे माइक्रो कंट्रोलर उसे हम कहते हैं वेगा ई टी 1031 जो कि 32 बिट का आता है, और जो दूसरा है वेगा AS1061 वो है 64 बिट प्रोसेसर। तो मतलब ये दो जिस तरह से आ रहे हैं वेगा के अंदर और दो आ रहे हैं शक्ति के अंदर, तो इस तरह से काफ़ी अच्छी बात कही जा सकती है, अच्छी इनिशिएटिव कहा जा सकता है, और गवर्नमेंट की ओर से भी भाई एक अच्छी पहल की जा सकती है कि आत्मनिर्भर की ओर, जिस तरह से अभी हम देख रहे हैं कि जो हमारी काफ़ी चीज़ें मतलब मोस्ट ऑफ जो मैं कहूँगा कि बाहर से मंगवाई जा रही है, तो एक अच्छी तरह से अभी मतलब स्टार्टिंग किया गया है, धीरे धीरे करके हम आगे डेफिनेटली बढ़ सकते हैं अभी, क्या बोले?
सही बात है भाई। और यहाँ पे एक काफ़ी अच्छा है कि एक बहुत बड़ा बूस्ट मिल जाएगा अगर कोई ऑलरेडी काम कर रहा है, जो भी इंडिविजुअल कोई इंसान है या स्टार्टअप है, तो ये फ़ायदा भी हो जाएगा। तो यहाँ पे एक और भी है सैम्पल एप्लीकेशन जो यहाँ पे दी हुई है सारी, तो उस पर हम बात करें तो यहाँ पे बहुत कुछ है, मतलब उतना लिमिटेड नहीं है कि इतने में ही करिए आप, बट ये सिर्फ एक बेसिक एग्जांपल दिए हुए कि वेदर रिपोर्टिंग सिस्टम बना सकते हैं, अलार्म क्लॉक बना सकते हैं, फिर एयर पोल्यूशन मॉनिटर है वो भी बना सकते हैं,
मतलब
बेबी
कुल मिलाकर
मॉनिटरिंग है।
हमें ये प्रोसेसर का यूज करके
बस
किसी भी
मेन
तरह
वही
से
है कि
कॉम्प्लेक्स डिजाइन बनाना है।
राइट मेन वही है कि हमारा जो ये प्रोसेसर जो दो जो प्रोसेसर हमारे हैं उसका यूज़ करके ये सारी IoT डिवाइस बनानी है। जैसे ये सारी डिवाइस बनती तो है सारे दूसरे प्रोसेसर में, रास्पबेरी पाई में भी बनती है, तो यहाँ पे IoT जो है वो काफ़ी बढ़ रहा है मार्केट, जैसे स्मार्ट डिवाइस सारे बढ़ रहे हैं, तो उसमें फ़ायदा ये रहेगा कि अपने प्रोसेसर से डिवाइस बनने लगेगी ऐसी, तो अगर ये सक्सेसफुल रहेगा ये अगर प्रोग्राम तो एक बहुत ही अच्छी बात रहेगी।
मतलब कि अगर कुछ अच्छी डिजाइन निकल जाए, कुछ अच्छे आ, आ, मतलब कुछ अच्छी डिवाइस निकल जाए उसके अंदर जो इसका यूज़ करके बनाए, तो काफ़ी डेफिनेटली इंडिया को फ़ायदा होगा, मतलब आत्मनिर्भर होने में काफ़ी ज़्यादा फायदा हो सकता है भाई।
सही बात है भाई।
बढ़ते हैं हमारी अगली खबर की ओर भाई, तो उसी से ही रिलेटेड मैं कहूँगा ये न्यूज़ की, अभी जो बात कर रहे हैं हम आत्मनिर्भर भारत की, तो इसी के तहत एक और अच्छी न्यूज़ इंडिया के लिए मैं कहूँगा आ रही है। तो भाई जिस तरह हम बात कर रहे हैं कि आईफोन 12 जो कि अभी अक्टूबर में लॉन्च होने वाला है, ऐसी अभी रूमर्स चल रही है, देखेंगे अभी किस तरह कब लॉन्च होता है वो अभी फिक्स नहीं है, लेकिन उसी से चलते हुए एक न्यूज़ आ रही है कि भाई जो वेस्टर्न कंपनी है जो कि एप्पल की ताइवानीज मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, उन्होंने क्या किया है कि भाई उन्होंने आईफोन 12 इंडिया में मतलब मैन्युफैक्चरिंग करने का सोच लिया है, मतलब अगले साल 2021 में 21 के जो मतलब हम 21 में देख पाएंगे कि जो आईफोन 12 है वो इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चरिंग होंगे, तो ये भी काफ़ी अच्छी बात कही जा सकती है भाई, क्या कहोगे इसके बारे में?
सही बात है भाई। और आईफोन 12 बनाने वाले अभी तो यहाँ पे मैन्युफैक्चर में, और उसका अभी ये जो आ रहा था कुछ प्रोडक्शन भी के लिए एम्प्लॉय भी हायर कर लिए, ये भी अभी न्यूज़ आ रही है लेटेस्ट में।
तो मतलब एक तरह से जिस तरह से हम बात कर रहे हैं आत्मनिर्भर भारत की, जिस तरह से शुरुआत कर रहे हैं, तो काफ़ी कंपनियां भी इंडिया के अंदर भी इन्वेस्ट करने जा रही है, जैसे हम बात कर रहे हैं कि ये एप्पल भी अभी मेड इन इंडिया वाला फ़ोन बना रही है आईफोन 12। हम पहले बता दें भाई कि ये सिर्फ अभी जिस तरह से बात कर रहे हैं कि मैन्युफैक्चरिंग मतलब पूरा मैन्युफैक्चरिंग नहीं होने वाला है, मतलब कुछ कुछ पार्ट इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चर होंगे और कुछ पार्ट वहाँ से बाहर से मंगवाए जाएंगे और फिर यहाँ पे असेंबल होगी, मतलब कुछ भी करें लेकिन इंडिया के लिए तो ये अच्छी बात हो सकती है भाई, कि जिस तरह हम बात कर रहे हैं कि 2900 करोड़ रुपये जो इन्वेस्ट करने वाली है आईफोन इंडिया के अंदर, तो बात करें कि ये जो नारसपुरा प्लांट जो है जो कोलार डिस्ट्रिक्ट है बेंगलुरु से 17 किलोमीटर दूर है, वहाँ पे उन्होंने एक प्लांट रखा है जिसके लिए आईफोन को 43 एकर्स दी गई है, किसकी ओर से? तो कर्नाटका इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट बोर्ड की ओर से उनको 43 एकर्स ज़मीन भी दी गई है, उसमें से ये जो प्रोडक्शन था वो 2017 में दी गई थी ज़मीन, उसके तहत बात करें तो 10,000 मतलब कि 10,000 जॉब्स एप्पल देगा इंडिया को, और उसमें से बात करें तो विस्टर्न ने अभी 2,000 तो हायर कर लिए हैं और आगे जाके और भी हायर करेंगे, मतलब कुल मिलाकर 10,000 अच्छी बात कही जा सकती है भाई, क्या बोलोगे इसके बारे में?
सही बात है भाई। और उनको भी एक फ़ायदा रहेगा, जैसे एप्पल आईफोन जो आता है यहाँ पे तो कॉस्टली हो जाता है क्योंकि टैक्स इतना ज़्यादा है, तो यहाँ पे जो इंडिया टुडे का आर्टिकल जो है यहाँ पे हम देख सकते हैं, तो इन लोगों का ये कहना है कि लोकल प्रोडक्शन रहेगा आईफोन का तो उसमें 22% जो है वो टैक्सेस जो है वो बच जाएंगे, और हमारे यहाँ नई जॉब भी अपॉर्चुनिटी भी बढ़ जाएगी, तो ये दोनों तरह से फ़ायदा रहेगा हमें।
तो मतलब बात करें कि किस टाइम पे ये शुरू होगा, तो बता रहे हैं सब लोग कि 2021 के बीच में, यानी कि हम सोच सकते हैं कि जून जुलाई के आसपास स्टार्ट हो सकती है 2021 में ये मैन्युफैक्चरिंग होना आईफोन 12 की, तो बात करेंगे, सब बात करेंगे किस चीज़ की भाई मैन्युफैक्चरिंग होगी, किस चीज़ बना, क्या चीज़ बनाई जाएगी। तो सब बात करें कि एक तरह से बात करें कि पीसीबी डेवलप की जाने वाली है। पीसीबी मतलब कि प्रिंटेड सर्किट बोर्ड भाई, जो आईफोन का आता है वो अभी डेवलप किए जाना वाला है इंडिया के अंदर। ऐसी रूमर्स अभी चल के आ रही है, कन्फर्म न्यूज़ नहीं है, लेकिन बात ऐसी चल रही है कि पीसीबी डेवलप किए जाने वाला है। अगर बात करें पीसीबी की, तो पीसीबी के ऊपर हम जब माउंट करते हैं तो मतलब माइक्रो प्रोसेसर माउंट करते हैं, कुछ और सर्किट्स माउंट करते हैं, तो मतलब पूरा आधा जो रेट होता है आईफोन का या फिर किसी भी मोबाइल का, वो पीसीबी के ऊपर जो कि जो जो मतलब डिवाइस आते हैं वो हम डालते हैं पीसीबी के ऊपर, तो आधा प्राइस तो इसी का हो जाता है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट रहेगा इंडिया के लिए भाई।
सही बात है भाई। और ये एक दूसरा फायदा ये रहेगा कि यहाँ पे स्टार्ट अगर हो जाता है एक बार आईफोन का, तो दूसरी कंपनीज भी धीरे धीरे आने लगेगी। और एक पूरा मैन्युफैक्चर सिस्टम अगर यहाँ पे खड़ा हो जाएगा, तो पूरा मेड इन इंडिया जो हमारा जो अभी मेक इन इंडिया हम कर रहे हैं, तो पूरा मेड इन इंडिया कर पाएंगे।
वो भी सही बात है। और बात करें भाई आईफोन की, तो ऐसा नहीं कि अभी पहला ही आईफोन मैन्युफैक्चरिंग करने जा रही है आईफोन, इससे पहले 6 मोबाइल मैन्युफैक्चर कर रही है इंडिया में। बात करें पहले तो iPhone 6s, iPhone 7 और आईफोन ऐसी जो फर्स्ट जनरेशन वाला आईफोन ऐसी था वो, फिर उसके बाद आता है iPhone 6s, iPhone 7, iPhone XR और iPhone 11, वो अभी इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चरिंग हो रहे हैं। और अभी जो नया मोबाइल आया है भाई iPhone SE का, सेकंड जनरेशन वाला, वो अभी स्टार्ट ही होने वाला है मैन्युफैक्चरिंग होने की। तो बात करें तो 7वां मोबाइल होगा जो कि इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चर होगा। तो मेड इन इंडिया को काफ़ी बूस्ट मिल सकता है, जिस तरह से हमने बात की कि गवर्नमेंट काफ़ी ट्राई कर रही है मेड इन इंडिया मतलब आत्मनिर्भर भारत होने की। काफ़ी ज़्यादा जो चीज़ें होती है वो इंडिया के अंदर ही मतलब बने और इंडिया के अंदर ही फिर हो, इस तरह से काफ़ी ज़्यादा ट्राई कर रही है। तो अच्छी बात कही जा सकती है कि एप्पल कंपनी धीरे धीरे मतलब बात कर रही है कि उसका जो सबसे बड़ा प्लांट है मैन्युफैक्चरिंग प्लांट वो चाइना के अंदर है। तो अभी जिस तरह से चाइना का जो चल रहा है कोरोना के बाद, तो धीरे धीरे कंपनियाँ अपना प्लांट सब चाइना के अंदर से मूव कर रही है। तो आईफोन की जो सबसे बड़ी जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट कहे जा सकते हैं वो चाइना के अंदर है। तो वो क्या कर रहा है, धीरे धीरे अभी उसका जो प्लांट है वो वाशिंगटन और बीजिंग में धीरे धीरे मतलब शिफ्ट कर रहा है। तो इस तरह से इंडिया के लिए भी काफ़ी अपॉर्चुनिटी हो सकती है भाई, क्या कहोगे इसके बारे में?
सही बात है भाई। और एक काफ़ी स्लोली स्लोली सारी कंपनियां जो जितनी भी यूएस कंपनीज है, तो यूएस का भी वही हो रहा है कि प्रॉब्लम हो रहा है। इंडिया भी, इंडिया चाइना रिलेशन भी ऐसे है और यूएस चाइना भी ऐसे है, तो जितनी भी यूएस कंपनीज जो है वो भी वही प्रीफर करेगी कि चाइना के अलावा किसी और कंट्री में ये चीज़ें हो, मैन्युफैक्चर हो। तो एक
सही
काफ़ी
बात
अच्छी
है।
बात है।
तो भाई इस बारे में हमने काफ़ी डिस्कशन कर ली, मैं जानता हूँ। तो बढ़ते हैं हमारी अगली खबर की ओर भाई, तो क्या बताना चाहोगे आप अगली खबर में?
भाई अगली खबर ये बताना चाहेंगे हम कि रियलमी का जो अभी नया लॉन्च जो हुआ है, रियलमी C12 और C15, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो रियलमी C12 लॉन्च हो गया है, बहुत सारी सी सीरीज अभी स्टार्ट हो गई है इनकी। तो C15 के बाद अभी पता नहीं कितने आएंगे, C16, 17, 18, बहुत
तो
कुछ कर
भाई
सकते
इसके
हैं।
कुछ स्पेसिफिकेशन के बारे में पहले बात करें, और मैं सबसे बड़ा सवाल ये पूछना चाह रहा हूँ भाई रियलमी से, ये पूछना चाह रहा हूँ कि ये सीरीज तो उन्होंने निकाली, और हम बात करें कि सी सीरीज काफ़ी अफोर्डेबल रेंज होती है, मतलब कि काफ़ी कम रेंज के अंदर फ़ोन आते हैं उसके। जो पहली उन्होंने C1 निकाली, फिर C2, फिर C3, मतलब C2 जो आ रही थी वो 6-7 हज़ार के बीच में आ रही थी, जो C3 निकाली वो भी 7-8 हज़ार के आज, मतलब कुछ एफोर्डेबल रेंज में काफ़ी बढ़िया फ़ोन वो रियलमी दे रहा था। लेकिन भाई बात करें कि C1, C2, C3, उसके बाद उन्होंने निकाल दी C11, तो मतलब बीच में से उन्होंने क्या किया, मतलब क्या उनकी आगे की रणनीति होगी, किस तरह से उन्होंने स्किप कर दिया? हमने अगले वीडियो में भी बात की थी हमारे, ये भी बात कर रहा हूँ मैं, तो किस तरह से ये मतलब नंबरिंग दे रहे हैं, मुझे कुछ इसका आइडिया नहीं होगा भाई, इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे भाई?
पता नहीं भाई क्या हो रहा है अभी तो, क्योंकि सबका हो रहा है। और जैसे शायद Redmi 9 का भी अभी आने वाला है लॉन्च, तो उनका भी हो रहा है, इनका भी हो रहा है, दोनों की कंपटीशन अभी भी स्टार्ट है। तो जितने होने हो सके उतने से ज़्यादा फ़ोन लॉन्च करना है इनको। बट एक, हाँ,
तो
जो आपने कहा ना वो बात सही है भाई, कि एक क्या प्रॉब्लम हो गया कि जैसे 6-7 हज़ार की रेंज में जो फ़ोन आ रहे थे वहाँ पे अभी कोई ऑप्शन नहीं मिल रहा हमको ज़्यादा, तो वो हो गया ना
वो
उस
सही
सब
बात
उसका
है भाई।
प्रॉब्लम।
तो मतलब उन्होंने धीरे धीरे ग्रेजुअली करके प्राइस अपनी बढ़ा रखी है, जिस तरह से अभी मैंने बताया कि 6-7-8 हज़ार में फ़ोन आ रहे थे सी सीरीज के, वो अभी अभी पहुंच चुके हैं 12 या 11-12 हज़ार तक पहुंच चुके हैं भाई। तो ये बात तो नोटिसेबल करने वाली हो सकती है भाई, क्या कहोगे?
सही बात है भाई। तो C12 के बारे में बात करें अभी स्टार्ट में हम, तो इसके अंदर जो हमारे स्पेसिफिकेशन जो आ रहे हैं हमको जो मिल रहा है वो एक बैटरी पे, यहाँ पे ज़्यादा फोकस लग रहा है हमको कि ये कर रहे हैं अभी, और हीलियो G35 गेमिंग प्रोसेसर है, उसके साथ साथ हमको 13 MP का ट्रिपल कैमरा मिल रहा है, 6.5 इंच की स्क्रीन है, वो तो सब जो हमको जो बेसिक मिल रहा है वो सब मिल रहा है यहाँ पे। तो क्या कहना है आपका स्पेसिफिकेशन के बारे में, क्या कहना है आपका इसके बारे में?
स्पेसिफिकेशन तो भाई प्राइस के हिसाब से जिस तरह से देखे कि C12 की उन्होंने शायद 9,000 रुपये कीमत वही वही रखी है ना, 9,000 कीमत रखी हुई है, तो 9,000 के देखे हम तो 9,000 में काफ़ी अच्छी कीमत कही जा सकती है भाई की। मतलब जिस तरह से उन्होंने स्पेसिफिकेशन दिए है कि जो उनका सबसे मतलब नोटिसेबल जो पार्ट मैं कहूँगा वो है 6,000 mAh की बैटरी। तो मतलब अभी तक तो मैं बात करूँ, मुझे शायद याद है तब तक तो एक या सिर्फ दो ही फ़ोन में 6,000 mAh की बैटरी आती है, वो सिर्फ जो एम सीरीज़ के सैमसंग के फ़ोन आते हैं वो, और शायद एक माइक्रोमैक्स या फिर मुझे याद है तब तक उसमें कुछ 6,000 mAh की बैटरी आ रही थी। तो अच्छी एक तरह से मतलब बैकअप वाली बैटरी उन्होंने दी हुई है 6,000 mAh की बैटरी, तो कोई आपको काफ़ी ज़्यादा स्टैंड बाय लंबा टाइम मिल सकता है भाई। तो मेरा जो मानना है इसके बारे में तो प्राइस के हिसाब से भाई उसकी स्पेसिफिकेशन काफ़ी बढ़िया कही जा सकती है, और उसमें उन्होंने पीछे जो दिए हुए 3 कैमरे दिए हुए हैं जो कि काफ़ी अच्छी बात हुई, और उसकी डिज़ाइन भाई देखे तो काफ़ी अच्छी डिज़ाइन उन्होंने बनाई है
तो
जिस तरह से वो दिख रहा है बे।
स्टार्ट में भी डिज़ाइन की बात करें सिर्फ।
तो मतलब कि अच्छी तरह से डिज़ाइन भी बनाई है, और कैमरे की बात करें भाई तो 13 MP का, 2 MP का और 2 MP का ट्रिपल कैमरा दिया हुआ है उन्होंने, और सेल्फी में भी 5 MP का कैमरा दिया हुआ है। तो अच्छी कहूँगा मैं कि स्पेसिफिकेशन तो अच्छी है भाई, लेकिन ये जो कर रहे हैं कि धीरे धीरे ग्रेजुअली अपना जो प्राइस है वो बढ़ा रहे हैं, मतलब उन्होंने ऐड क्या किया है इसमें, तो ऐड किया है उन्होंने फिंगरप्रिंट ऐड कर दिया है, तो अभी इतना भी ज़रूर नहीं है कि भाई सीरीज में जो वो फिंगरप्रिंट नहीं दे रहे थे तो भी काफ़ी बिक्री हो रही थी फ़ोन की, और अभी दे रहे तो भी इतनी होगी, तो मतलब एक जो प्राइस रेंज उनका था वो रखना चाहिए था, मेरा ऐसा मानना है। क्या कहोगे भाई?
वो तो है भाई, वहाँ पे अभी कोई ऑप्शन नहीं रहा हमारा कुछ 6,000 7,000 में, सेवन
और
थाउजेंड
भाई
से ज़्यादा फिर हम अगर बढ़ते हैं जैसे 7,500 में जाते हैं तो फिर हमको ये रहता है कि 8,000 में कुछ अच्छा फ़ोन आ रहा है, 9,000 में अच्छा रहा है।
वो सही बात है, और भाई सबसे बड़ी जो बात मुझे लगी ना, मैं तुझे बताना चाहूँगा कि ये जो C12 है और C15 है दोनों सेम फ़ोन है, इसके अंदर कोई फ़र्क नहीं है सिवाय के दो तीन चीज़ों के। तो बता दूँ इसमें फ़र्क क्या है भाई कि जो कैमरा है बैक पैनल में बैक साइड उसमें सिर्फ एक कैमरा ज़्यादा दिया हुआ है C15 के अंदर, मतलब कि 13 MP का, और जो एक्स्ट्रा दिया है वो 8 MP का दिया है। और जो बात करें C12 की तो ये एक ही वेरिएंट में आता है 3 GB 32 GB, और ये जो C15 है वो दो वेरिएंट में आता है 3 GB 32 GB और 4 GB 64 GB। जो 3 GB वाला आता है वो भाई आता है 10,000 में, और 64 GB का जो आता है वो आता है 11,000 रुपये में। तो इस तरह से सेम टू सेम दिए हुए फ़ोन, तो मैं कहूँगा भाई कि उन्होंने स्पेसिफिकेशन सेम दिए हैं, सिर्फ प्राइस में 1,000 ज़्यादा या फिर जो 64 GB का है उसमें 2,000 ज़्यादा लिए, तो मतलब दोनों को मिलाकर एक फ़ोन भी बनाया जा सकता था भाई। क्या बोला
राइट
तू?
राइट, इतने मतलब ये प्रॉब्लम भाई है कि इतने कम बजट डिफरेंस में दो फोन रखने की ज़रूरत भी नहीं थी।
हाँ, और उसकी जो स्पेसिफिकेशन हम देखे भाई तो सेम टू सेम स्पेसिफिकेशन है, तो मतलब उसको मिक्स करके एक फ़ोन भी बनाया जा सकता था जिसके दो वेरिएंट हो, 3 GB हो और 4 GB 64 GB हो, इस तरह से कुछ अच्छा किया जा सकता है और उसका भी काफ़ी फायदा हो सकता है। लेकिन उन्होंने क्या कि दो फोन अलग अलग लॉन्च किए तो ये भी बिकेगा वो भी बिकेगा, तो टोटल एडवांटेज तो कंपनी को ही होगा, शायद यही सोच के उन्होंने दो फोन बनाए होंगे भाई।
हाँ भाई, और मतलब एक और बात अगर मैं करूँ तो इसकी एक दूसरा एक जो इश्यू मेरे को दिख रहा है वो ये है कि HD+ स्क्रीन है यहाँ पे, जैसे Redmi 9 Prime 10,000 का है शायद, है ना, तो उसमें
हाँ
फुल
ठीक
एच डी
बात।
प्लस है, तो अभी HD+ का थोड़ा वो एक सोच सकते हैं हम उसके बारे में।
तो मतलब मैं जो कह रहा था कि ये सी सीरीज उन्होंने 7-8-9 हज़ार 7-8 हज़ार के बीच में रखी हुई थी, तो फिर ये स्पेसिफिकेशन वो कम देते तो भी
मैटर नहीं
लोगों को
करते।
चले लगता कि भाई चलो कि प्राइस तो कम है ना, तो अच्छी मोबाइल है, तो धीरे धीरे करके प्राइस बढ़ा रहे हैं। तो ये रियलमी की बात नहीं है, सभी
इसमें
फ़ोन धीरे 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 करके अपनी प्राइस बढ़ा रहे हैं। कुछ भी भाई कुछ भी नहीं हो रहा फिर भी 1,000 बढ़ा दिया, फिर कह रहे GST का बढ़ गया, लेकिन हर बार तो GST नहीं लगती ना भाई।
राइट राइट, और ये क्या हो रहा है ना, जैसे कुछ इसमें से अगर कुछ कम कर देते ना थोड़ा बहुत, तो भी चल जाता, प्राइस थोड़ी कम कर देते उस
हाँ,
करके।
मैं वही बोल रहा था भाई कि सी सीरीज के जो फ़ोन आते हैं 7-8 हज़ार के बीच में, उसमें वो फिंगरप्रिंट सेंसर नहीं दे रहे थे, जो उसका कैमरा होता है वो कम दे रहे थे, दो कैमरे दे रहे थे बैक में, तो वो चलता था क्योंकि प्राइस के हिसाब से काफ़ी अच्छे फ़ोन आ रहे थे। तो ये क्या हो गया, तो फिर ये 10 हज़ार के आसपास आ गए, तो लोग सोचेंगे कि भाई ये लेना है या फिर कुछ और 1 हज़ार ज़्यादा दे के कुछ अच्छा फ़ोन लेते हैं, वो सोचने लगेंगे लोग, क्या कहोगे?
सही बात है भाई, वही है, और कुछ उतना कुछ नहीं मिल रहा है। और दूसरा मेरे को एक चीज़ जो मेरे को कुछ दिख रहा है जो चेंजेस, वो मैं अभी बता रहा हूँ। तो एक चार्जिंग, आई थिंक चार्जिंग स्पीड में डिफरेंस है, क्योंकि यहाँ पे 18 वॉट
हाँ
का
वो
है,
है, सही बात है, वो 10 वोल्ट का है और वो दूसरे वाले C15 में 18 वोल्ट
C12
का
में
आ
10 वॉट का है, C15 18 वॉट का है,
ओके, वो
तो वो
डिफरेंस है
है।
भाई।
और जो पोर्ट जो है चार्जिंग पोर्ट, वो शायद माइक्रो यूएसबी है ना यहाँ पे,
माइक्रो यूएसबी है भाई, तो अभी के समय में जो चल रहे हैं यूएसबी टाइप पोर्ट जो
डाय।
काफ़ी सक्सेसफुल हो रहे, पॉपुलर हो रहे, तो इस टाइम पे यूएसबी देना कुछ सोचने वाली बात हो
तो
सकती है
वही,
भाई।
वो भी इश्यू है एक, क्योंकि अभी
तो
सारे
देखेंगे
टाइप सी
अभी।
हो गए।
हाँ हाँ मैं भी ये बोल रहा हूँ कि काफ़ी टाइप सी हो गए, तो अभी ये मतलब लेने का कुछ मतलब नहीं हो सकता है भाई, कि अभी काफ़ी ज़्यादा मोबाइल मतलब सारे फ़ोन जो अभी रेडमी भी लॉन्च कर रहा है 10 हज़ार के बीच में जो प्राइस रेंज वाले, वो भी सी टाइप सी दे रहा है, तो अभी रियलमी को भी आगे बढ़ना होगा और कंपटीशन में टिके रहना है तो भाई इसीलिए सी पोर्ट देना ही पड़ेगा, क्या बोलते हैं?
सही बात है भाई, सारे फ़ोन अभी तो सी टाइप सी में ही आ रहा है, तो कुछ उतना कुछ मतलब नहीं रहता है।
सही बात है भाई, तो इस तरह से अभी देखेंगे कि आने वाले समय में देखेंगे कि किस तरह से पॉपुलर होती है ये सीरीज। बात करें ये C12 की, तो उसका जो फर्स्ट सेल है भाई वो 24 अगस्त को होगा और जो C15 है वो 27 अगस्त को होगा। दोनों ही दो कलर में अवेलेबल है, पावर ब्लू और पावर सिल्वर कलर में अवेलेबल है। दोनों की जो सेल है वो realme.com और फ्लिपकार्ट के ऊपर होगी 24 अगस्त और 27 अगस्त को, तो देखेंगे भाई किस तरह से पॉपुलर हो सकते हैं या फिर किस तरह से बिकते हैं या फिर कितने यूनिट बिक पाते हैं रियलमी।
सही बात है
तो
भाई,
इस तरह से हमने दोनों ने अपना पॉइंट पॉइंट ऑफ व्यू रखा कि इस तरह से भाई इम्प्लीमेंट कर सकते हैं या फिर इस तरह से अपग्रेड कर सकते थे अपने आप को रियलमी, तो अभी ये देखने वाली बात हो सकती है आगे आगे किस तरह का होता है भाई, क्या कहोगे?
सही बात है भाई। और मतलब यही हमारा सिर्फ इतना ही पॉइंट था कि कुछ चीज़ें जो चेंज हो सकती थी, और ये भी हो सकता है कि बजट के हिसाब से तो वैसे सही है, कुछ उतना प्रॉब्लमेटिक नहीं लग रहा है, तो अगर
वो भी
बजट के
सही
हिसाब
बात है,
से
मतलब
देखें
भाई
तो काफ़ी अच्छा है, बट दो तीन चीज़ें जो है वो शायद हो सकती थी चेंज।
मतलब कि ये चीज़ इम्प्रूव होनी चाहिए थी, इस तरह से हमने अपना पॉइंट ऑफ व्यू सिर्फ रखा है भाई। तो
राइट,
अभी हमारा शो यहीं पर हम स्टॉप करते हैं भाई, तो अगली जो वीक आएगी उसमें हम फिर ऐसी खबर लेकर आएंगे आपके लिए जिस तरह से अभी हम बात कर रहे थे, तो धीरे धीरे करके इस तरह से हम आपको न्यूज़ देते रहेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्या बोलते हो भाई?
सही बात है भाई, पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, और ऐसी चीज़ें हम डिस्कशन लेके आएंगे, कोई भी टॉपिक जो आ रहा है, जो हमारा गवर्नमेंट का ऐसा कोई इनिशिएटिव है या फिर जो न्यू प्रोडक्ट लॉन्च है, तो उस सब के बारे में हम बात करेंगे।
तो भाई मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।
जय हिंद, वंदे मातरम।